इस कलाम के जवाब में जब उनको सुनाया, सुनाने के लिए, उनको सुनने के लिए कहा जाता था, तो वो क्या कहते थे? नंबर वन क्या कहते थे? कुलूबुना फी अकिन्ना मिम्मा तदाउना इलैही, भाई हमारे दिल तो पर्दे में है इससे जो तुम पुकारते हो हमको, तरफ उसके जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो ना, हमारे दिल तो इससे पर्दे में है। यानी हमारे दिल पे बात असर ही नहीं करती, हमें समझ ही नहीं आती आप क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे माशाल्लाह से मुसलमान भी बात ऐसे कहते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती इस कुरान की, तो हमें समझ ही नहीं आती, तो हमें तो पता ही नहीं चलता। डरना चाहिए इससे, हम क्या ईमान लाएंगे, हम क्या ये बात करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलता, हमारे दिल पर्दे में है। जब चीज पर्दे में हो जाती है तो क्या होता है, फिर उस तक आप पहुंच नहीं सकते ना, उसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, तो कवर्ड है। यानी अब तुम्हारी बातें बाहर से ही चली जाएंगी, अंदर नहीं हमारे दिल के आ सकती, क्योंकि जो चीज दिल में आ जाए ना, दिल को लग जाए, वो फिर इंसान छोड़ नहीं सकता। सोचिए किसी की बात अगर आपके दिल को लग जाए, दिल में उतर जाए, फिर भूलती है वो भला, फिर छोड़ते हैं भला उसको। अल्लाह की बात भी जब दिल को लग जाती है ना, फिर इंसान इसको छोड़ नहीं सकता। तो कहते थे हमारे तो दिल ही पर्दे में, हमें तो समझ ही नहीं आती। यानी तुम हमें जो पैगाम दे रहे हो ना, ऐसे ही तुम तो अपना वक्त ही जाया कर रहे हो, हमें तो समझ नहीं आती। और नंबर टू, वफी आजानी ना वक्रम, और हमारे कानों में गरानी है, बोझ है, यानी हम सुन ही नहीं सकते जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, हमें हमें नहीं सुन रहा वो, हमारे कान बहरे हो गए इससे। वक्र है ना, बोझ है, बोझ कोई चीज कब बोझल हो जाती है, हाय सुना नहीं जाता, कब होता है ऐसे, जब कोई चीज पसंद ना हो, ना आप ये बात मुझे ना सुनाओ, मेरे से बार बार सुनी नहीं जाती, बोझ लगने लगती है। जब लोग यानी ये कुरान पढ़ा जा रहा हो और लोग चैनल चेंज कर देते हो, या कहते हैं उसको बंद करो, कुछ और सुन लें, ये नहीं सुनना, क्यों? बस दिलचस्पी ही नहीं है, इससे मोहब्बत ही नहीं है, इसीलिए झट से उठ के उसको ऑफ करते हैं। तो जब इंटरेस्ट ना हो, दिलचस्पी ना हो, से मोहब्बत ना हो, फिर वो बात बोझ लगती है कानों को। तो कहते थे हमें तो बस बोझ लगता है, अब वो अपने मुंह से बोल देते थे, हम दिल ही दिल में कहते रहते हैं, अरे ये क्या मुसीबत है, बंद भी करते हैं, बस भी करें, हम मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन कैफियात वही होती है। वमिन बैनिना वबैनिका हिजाब, और तीसरी बात उन्होंने क्या की, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो भाई एक पर्दा है, एक हिजाब है। क्या हिजाब था, एक कौन सा हिजाब था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उन लोगों के दरमियान आ गया था? नबी तो वही थे, नबुवत से पहले इन्हीं लोगों में बैठते थे, उठते थे, इन्हीं के साथ होते थे, यही लोग उनको सादिक और अमीन कहते थे, ट्रस्ट वर्दी कहते थे। अब क्या ऐसा हिजाब आ गया, अब क्या ऐसी दूरी हो गई? कोई जाहिरी पर्दा तो कोई भी नहीं था ना, कौन सा हिजाब था, ये असल में एक अनसीन हिजाब, जिसको कहते ना डिस्टेंस आ गया, हमारे और आपके दरमियान अब डिस्टेंस आ गया। और ये देखें, ये वाकई होता है कि जब कुरान दिल में उतर जाए, जिसके दिल में उतर जाए और जिसके ना उतरे, खुद ब खुद दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है। किस तरह, आप देखें, दोनों के शौक बदल जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, दिलचस्पियां डिफरेंट हो जाती हैं, एक का दुनिया को देखने का रंग ढंग अलग है, दूसरे का अलग है, एक की सोच का एंगल अलग है, दूसरे का अलग है, एक की प्रायोरिटीज अलग है, दूसरे की अलग है, तो डिस्टेंस तो खुद ब खुद आ जाएगा ना। आज भी देखिए, एक बंदा है वो कुरान पढ़ता है, दीन की तरफ आ जाता है, और एक है जो बेदीन है, क्या होता है? पहले दोनों एक साथ रहते थे, सब था, दोस्ती थी या जो भी कोई ताल्लुक था, बड़े अच्छे भले हंसते खेलते थे, अब क्या फर्क आया? जाहिरियत में तो कोई शक्लें तो नहीं बदल गई ना, क्या हो गया, क्यों अजनबी होने लगे, क्यों अब एक दूसरे के साथ मजा नहीं आता? एक पर्दा सा हायल हो गया, अनसीन, एक डिस्टेंस आ गया, क्योंकि जहन वो नहीं रहा, क्योंकि गोल्स फर्क हो गए, प्रायोरिटीज फर्क हो गई, थिंकिंग फर्क हो गई, अमल फर्क हो गए, लाइफ स्टाइल फर्क हो गया, तो डिस्टेंस तो खुद ब खुद आएगा ना। पहले और बातें करते थे, अब हर वक्त अल्लाह की बातें करने लगे, तो डिस्टेंस तो आ गया ना। तो उन लोगों ने कैसा कैसी बात कही कि हमारे और आपके दरमियान तो एक पर्दा आ गया, हमारे रास्ते अब जुदा हो गए, हमारी सोच जुदा हो गई, हमारे दिल भी गिलाफों के अंदर है, कान भी हमारे बोझ लगता है उनको आपकी बातें सुनना, और ये भी जो एक खिंचाव सा आ गया है हमारे और आपके दरमियान, तो एक अजनबियत सी आ गई है, एक दीवार आ गई है। आप देखें ऐसा एक घर में रहते हुए लोगों में भी हो जाता है, एक सोसाइटी में एक ही खानदान एक ही फैमिली के लोग होते हैं, एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आ रही होती, वेवलेंथ ही नहीं मिलती। क्यों? दोनों के नफा नुकसान के पैमाने फर्क हो गए ना। क्या चीज हो जाती है, इंसान का अंदर बदल जाता है, अंदर बदलता है, वरना इंसान तो वही होता है, जाहिर है वही इंसान है, खाना पीना वही है। क्या जो दीन की तरफ आ जाता है, क्या उसको खाना पीना छोड़ देता है, या उसके बच्चे नहीं होते, या उसकी शादी नहीं होती, या उसकी जरूरी जाते जिंदगी पूरी नहीं करता, क्या होता है? सब कुछ तो वही होता है, क्या चीज बदल जाती है? तो कुछ और नहीं बदलता, अंदर बदलता है, दिल बदल जाता है। ठीक है, जाहिरियत में थोड़ा बहुत पहनने ओढ़ने में शायद कोई फर्क आ जाए, लेकिन अदरवाइज असल फर्क जो होता है ना वो अंदर है। फामल इन्नना आमिलून, पस अमल करो, बेशक हम भी अमल करने वाले हैं, तुम भी करते जाओ जो तुम करते हो, हमने जो करना है ना तुम्हारी ही मुखालफत, वो हमने नहीं छोड़नी, वो हमने करते ही जाना, हमारे हाल पे हमें छोड़ दो, तुम अपना करते जाओ, हम भी करते ही जाएंगे तुम्हारी मुखालफत। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया है, इतना प्यारा जवाब, इतना अच्छा जवाब। ये नहीं कि उनकी बातों के ऊपर उनके साथ अब लड़ने शुरू हो जाए, तुमने ये कह दिया, तुमने गलत कह दिया, तुमने ऐसे कह दिया, कोई ऐसी बात करना नहीं। कितना अच्छा जवाब अल्लाह ताला ने सिखाया कि ए नबी, इनकी बातों के ऊपर जो ये कह रहे हैं, दिलों पे पर्दे, कानों में बोझ, और इसका जो ये इतनी बड़ी जुर्रत कर रहे हैं अल्लाह के कलाम के बारे में ऐसा कहने में, एक तरह से मजाक भी था ना इसमें, मगर इसका जवाब आपने कैसा देना, कोई तशद्दुद की बात नहीं करें। कितनी आजी है इस बात में कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कितनी आजी है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है इतना ऊंचा, आपसे कहलवाया गया, आप कह दो मैं तो खुदा तो नहीं हूं, मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूं, मिस्लुकुम, ये लफ्ज देखें कितना प्यारा है, सिर्फ ये नहीं आना बशरून, मैं एक इंसान हूं, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा, इंसान होने के नाते मेरे और तुम में कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ है? बस फर्क ये है कि यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, मेरे पास वही आती है। के तुम क्यों कहते हो मेरे और तुम्हारे दरमियान हिजाब आ गया, मैं तो तुम्हारे जैसा ही तो इंसान हूँ, मैं भी खा पी रहा हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं भी बाजार जाता हूँ, कौन सी चीज आखिर मैंने छोड़ दी है, तो मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ, कोई हवाई मखलूक तो नहीं बन जाता ना इंसान दीन की तरफ आके, उसकी भी वही जरूरियात होती है, वही गम होते हैं, वही खुशियां होती हैं, वही जीना मरना, खाना पीना, हंसना रोना, ख्वाहिशात, ये सब चीजें होती हैं उसके साथ भी। तो फरमाया मैं भी इंसान ही हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ, कोई अलग चीज नहीं हूँ, फिर क्यों कह रहे हो ये कि इतने हिजाब आ गए हमारे और तुम्हारे दरमियान, सिर्फ फर्क ये है कि अब मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं एक रब की तरफ, एक इलाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरी तरफ ये वही की गई है कि इलाह सिर्फ एक ही है, तो तुम सीधे हो, फस्तकीम हो, उस एक इलाह को मानो और सीधे रहो। सीधे रहो का मतलब क्या, सीधे चलो का मतलब क्या, सीधे चलो इलाही ही उसकी तरफ। एक तो ये इस्तकामत से है, इस्तकामत का माना क्या होता है, जम जाना, दोनों माने हम साथ साथ देखेंगे, इस्तकामत माना जम जाना, यानी तुम एक इलाह को मानो और फिर इसके ऊपर जम जाओ, इस्तकामत पे रहो। और इस्तकामत क्या है कि हक की तिबा करना, नेक काम करना, सीधे रास्ते पर चलना, और ये मुश्किल काम है कि इंसान नेकी पे इस्तकामत रखे, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पे अमल करे और इसमें जमा रहे। यानी इलामा तो ये भी ने कहा है कि इस्तकामत की दो किस्में हैं, एक तो अल्लाह ताला के साथ इस्तकामत यानी अल्लाह की इताअत करे, और दूसरी बंदों के साथ इस्तकामत यानी बंदों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आए। तो इस्तकामत पे रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका हक अदा करना ये आसान नहीं है। इंसान नेक काम करता जाता है फिर कहीं फिसल जाता है, फिर करने की कोशिश करता है फिर कोई गलती हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, पूरी कोशिश के बावजूद कहीं ना कहीं तो इंसान यानी उससे कमी रह ही जाती है, पूरा नहीं पड़ता। तो फरमाए इस्तकामत पे रहो, चलते रहो, वस्तगफिरू, क्योंकि कमी रह जाएगी तो अल्लाह से इस्तगफार करते रहो, माफी मांगते रहो। हर मामले में इस्तकामत पे हर वक्त रहना मुश्किल है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि आप इनसे कह दें फस्तकीमू, सीधे रहो, बरकरार रहो, कायम रहो, किसकी तरफ, इलही ही, उसकी तरफ। बिल्कुल इधर जब चीज सीधी रहती है तो कैसी होती है, कोई चीज सीधी हो बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, कहीं टिल्ट ना हो, कहीं झुकाव ना हो, ना तो इस तरफ के कहीं शिर्क में चला जाए, इस तरफ झुक जाए, उधर चला, नहीं बिल्कुल सीधे। इसी से आप जहन में रखें इस्तकामत फस्तकीमू क्या होगा। तो तौहीद इंसान को ऐसा ही कर देती है कि इंसान फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, वाकई हर एक से बेनियाज होके सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, फिर उसी पे भरोसा करता है, उसी से दुआएं करता है, उसी से उसकी अकीदतें जुड़ी होती हैं, जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए करता है, जिससे नफरत करता है उसके लिए करता है, किसी को कुछ देता है तो उसके लिए, किसी से कुछ लेता है तो उसके लिए, किसी से मेल मिलाप रखता है तो उसके लिए, किसी को खिलाता है तो उसके लिए। ये है फस्तकीम, उसी दे रहो, उसी की तरफ, हर काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सिर्फ उसी के लिए। कोई भी काम कर रहे हो, इबादत का कर रहे हो या लोगों से मामलात का कर रहे हो, सोच अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, नियत उसी की रजा होनी चाहिए, इखलास हो उसके अंदर, यानी इखलास के साथ। इस्तकामत में ये भी आ जाता है ना, इखलास के साथ काम करो, क्योंकि इखलास से नियत ना रही तो इंसान तो सीधा ना रहा ना। अगर उसमें किसी और की रजा आ गई कि किसी और को राजी करना है, किसी और को खुश करना है, किसी और को दिखाना है, तो सीधा तो ना रहा, टेढ़ा हो गया ना, फिर उसकी तरफ झुक गया। तो नहीं, सीधे रहना, ये भी हमारे लिए भी कितना बड़ा इसके अंदर सबक है कि इस्तकामत के साथ हमने चलना, किसी तरफ को भी नहीं झुकना। ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान बार बार अपनी नियत करता है, सीधी करता है नियत, फिर टेढ़ा हो जाता है, फिर उसके दिल में कोई लालच आ जाता है, फिर अपनी खुद नुमाई का, अपनी तारीफ का और इस का की चाहत दिल में आने लगती है, फिर वो कहीं तकब्बुर कर बैठता है, कहीं अपनी यानी तारीफ की लालच कर बैठता है, कहीं फूल जाता है, कहीं दिखावा कर देता है। तो नहीं, सीधे रहना है और बख्शिश मांगते रहो उससे। अब ये नहीं है कि अच्छा हम तो सीधे रह ही नहीं सकते और चलो छोड़ो ये सारे निकी के काम तो छोड़ो, क्योंकि हमसे तो नियतें सही नहीं होती, इखलास आता ही नहीं है। नहीं, इस्तगफार करते रहो, फिर अपने आप को सीधा करो, फिर चलो, रास्ता नहीं छोड़ना, नेकी के काम नहीं छोड़ने, नियत दुरुस्त करते जाना। वैलुन लिल मुशरिकीन, और वैल है मुशरिकों के लिए, हलाकत है मुशरिकीन के लिए। किन की खास तौर पे बात हो रही है, अल्लज़ीन ला युतून ज़कात, खास तौर पे उनकी बात यहाँ पे हो रही है जो ज़कात नहीं अदा करते। अब ज़कात का माना यहाँ पे क्या है, ज़कात वैसे तो यानी ज़कात के जो सारे अहकामात थे वो तो जाके मदीना में दिए गए, मक्का में भी ज़कात का तो यानी नमाज ज़कात वगैरह का तो यानी इसके बारे में फर्ज तो नहीं हुई थी, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता था, नमाज के साथ ही ज़कात का भी हुक्म आ गया था। तो लेकिन यह है कि पूरी जो तफसीलात हैं और जो किस तरह वसूल होगी और किस तरह इसका इंतज़ाम होगा, तो वो सारी चीज़ें जाके उसकी डिटेल जाके मदीना में ये आयात आई और उसके बाद ये बाकायदा तौर पे फर्ज हो गई, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था जकात का। तो वो जो जकात नहीं देते, अब बात तो मुशरिकों की हो रही है, फिर ये क्यों कहा गया वो जो जकात नहीं देते, मुशरिक ने तो वैसे ही जकात नहीं देनी। असल बात ये है कि जकात का खास तौर पे जिक्र इसलिए आया कि ये कुर्तुबी फरमाते हैं कि कुरैश जो थे वो बड़े मालदार लोग थे, वो गरीबों का और इनके ऊपर बहुत सदका व खैरात करते थे, मगर जो लोग मुसलमान हो जाते थे ना ये उनको महरूम कर देते थे। तो उनकी मजम्मत करना था कि खास तौर पे जकात की बात की गई कि अपना माल खर्च नहीं करते, अगर आम मानों में ले, हमारी वो जो जकात हम देते हैं उस मानों में ना ले, माल के खर्च करने के माने में ले, आम सदकात के माने में ले, तो वो जो माल खर्च नहीं करते खैर के कामों में, तो खास तौर पे जकात को मेंशन किया गया। और इसके मेंशन करने में एक ये भी है ना कि देखें जिसको ये देखना कि अल्लाह से मोहब्बत मुझे है या नहीं, वो ये देखे कि जब अल्लाह की खातिर माल खर्च करने को कहा जाता है तो मेरा हाथ खुलता है कि नहीं खुलता। मैं उस वक्त अपना माल बचा बचा के तो नहीं रखती कि ये एक क्राइटेरिया है अल्लादीना ला युतूना ज़कात। तो आम मानों में भी इसको लें, माली सदकात के मानों में भी इसको लें, तो फिर भी आप देखें जिसके लिए आपके दिल में मोहब्बत होती है लाजमी तौर पे आपके हाथ से उसके लिए पैसा खर्च करना कोई मुश्किल होता ही नहीं है, पैसा निकालना मुश्किल होता ही नहीं। आप देखें आपको अपने बच्चे के ऊपर खर्च करना है, कभी मुश्किल हुई? इतना खर्च भी कर लेंगे फिर भी नहीं थकते, कहते इन्हीं के लिए तो है, और किससे बचा बचा के रखते हैं, जिससे कोई खास लगा ना हो, खास मोहब्बत ना हो, उसे कहते हैं बचा के रखो। उस वक्त हमें सेविंग का याद आ जाता है। तो अल्लाह ताला से जिसको मोहब्बत होती है ना वो फिर उससे पैसे को बचा बचा के नहीं रखता। तो हम भी अपने माल खर्च करने के ट्रेंड्स को देखें, कहां पे हम शौक से खर्च करते हैं, हम देखते नहीं है कितने पैसे जा रहे हैं किसी बुटीक पे, मॉल में, या मस्जिद में अगर आपसे कुछ चंदा मांगा जाए वहां, या दीन के काम के किसी और काम के लिए, दीन को कोई जरूरत हो, अल्लाह का कोई काम हो उसके लिए। क्योंकि ये लोग ज़कात नहीं देते थे, ये नहीं माल खर्च करते थे, उनको अल्लाह ताला से क्या, उनको तो अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए वो माल खर्च ही नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वैल ऐसे मुशरिकीन के लिए जो ज़कात नहीं देते। और दूसरा माना अगर हम ज़कात का लें तो ज़कात का दूसरा माना है नफ्स की ज़कात। नफ्स की ज़कात कैसे है, मन ज़क्क़ाहा, जैसे कद अफ़लहा मन ज़क्क़ाहा, कामयाब वो हुआ जिसने इसको पाक कर लिया, इस नफ्स को पाक कर लिया। तो पाकी के लिए आता है ना, पाकीजगी के लिए, नफ्स की पाकीजगी किसमें है, नफ्स की ज़कात ये है इंसान ईमान ले आए, इसको शिर्क से पाक कर ले अपने नफ्स को। तो दोनों मानों में आप देखें, नफ्स की भी पाकीजगी, क्या अगर नफ्स की पाकीजगी किसमें लें ज़कात का माना, तो मतलब ये है कि शिर्क से पाक कर ले, ये शिर्क से नहीं अपने आप को पाक करते थे, ये पाकीजगी नहीं इख्तियार करते थे। और माल की सदकात की वो देखें तो ये हाथ से कुछ निकालते भी नहीं थे, कुछ नहीं देते थे। वहम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के भी इनकारी थे, आखिरत के इनकारी भी हैं, इसीलिए वैल इनके लिए, आखिरत को मानते ही नहीं। और जाहिर है आखिरत का इनकार तो इंसान को बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि जिसको ये ख्याल हो कि आखिरत है ही नहीं, फिर उसका अमल सोचें क्या होगा। और जिसको आखिरत का यकीन हो कि वहां पे जाके बदला मिलना है, उसको तो ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोई भी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है उसको 100% जिसको यकीन है वहां पे मिल जाएगा, उसको तो ऐसे ही लगेगा ना, अल्लाह के रास्ते में देना उसको कैसे लगेगा, जैसे आप बैंक में जमा करते हैं, कभी डरते हैं आप बैंक में जमा कराने से पैसे, कभी किसी को डर लगा हाय पता नहीं मिले कि नहीं मिले, कभी नहीं खौफ होता हमें, अल्लाह के रास्ते में देते हुए ऐसे लगता है कि हाय चला गया, इतने खर्च हो गए मेरे पैसे, वो खर्च नहीं हो गए, वो सेव हो गए हैं, सेविंग अकाउंट पे हमने जमा करा दिए, क्योंकि अल्लाह का वादा दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी, वो सेविंग हो रही है आपकी, बल्कि दुनिया के एक लॉकर में तो रखाओगे, कल को मर गए तो क्या होगा, लॉकर की चाबी किसी और को मिल जाएगी, वो तो यहीं रह गया। लेकिन जो इसने अल्लाह के बैंक में जमा कराया ना, उसकी चाबी साथ ही रहेगी आपके हमेशा, वो कहीं नहीं जाता। जिसको आखिरत पे यकीन है उसके लिए खर्च करना भी मुश्किल नहीं, उसके लिए अमल करना भी मुश्किल नहीं, उसको तो पता है यहाँ पे कुछ अगर थोड़ी भी खाली तो कोई बात नहीं है, वहां पे मिल जाएगा बदला। यहाँ पे मुश्किल भी बर्दाश्त कर ली तो कोई नहीं, वहां पे आसानी है। तो उस जिसकी नजर वहां पे होती है, फिर उसके लिए तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं। तो वो तो आखिरत पे यकीन ही नहीं रखते, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हलाकत या तबाही या बर्बादी और जहन्नुम की एक बात का नाम भी है। इन्नल लदीन आमनु व आमिलु सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने साले अमल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, वो जो ये करके आएंगे ना उनके लिए ऐसा अजर है जो गैरु ममनून है, कभी खत्म नहीं होने वाला। यानी उनको वो अजर मिलेगा जिसका दुनिया में तो कोई भी चीज आप ले लें, चाहे वो पैसा है, गाड़ी है, हर चीज एक दिन कम होते होते, डिटीरियोरेट होते होते खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जानी है, वो भी खत्म होने वाली चीज है। आखिरत क्योंकि अनलिमिटेड है, दुनिया की हर चीज ही लिमिटेड है ना, इसलिए यहाँ पे इसकी चीजें सब लिमिटेड है, जिंदगी यहाँ भी लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड, आखिरत अनलिमिटेड, उसका अजर भी अनलिमिटेड, दुनिया लिमिटेड उसकी हर चीज भी लिमिटेड। तो वहां पे तो देखिए एक एक नेकी का भी इतना बेहिसाब अजर है। अब आप इसे एक और अंदाजा लगाएं कि एक हदीस आती है इस सिलसिले में कि अल्लाह ताला किस तरह ऐसा अजर देते हैं जो खत्म नहीं होने वाला, कि अगर किसी बीमारी या किसी और उजर की वजह से कोई नेकी का अमल ना कर पाए, यानी रोज वो करता था, रोज उसका आदि था, एवरीडे करता था, मगर बीमारी की वजह से नहीं कर सका, या किसी सफर की वजह से या किसी और उजर की वजह से, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरा बंदा जो अमल अपनी तंदुरुस्ती में करता था और फुर्सत के औकात में पाबंदी से किया करता था, उसके उजर की हालत में वो अमाल बगैर किए हुए, किए नहीं है उसने, लेकिन वो अमाल उसके नामा अमाल में लिखे जाते रहे, लिखे जाते रहो। इस्तकामत की देखा है कितना फायदा, जहां आप इस्तकामत से कोई काम करते रहते हैं, उसके बाद कभी नहीं भी आपसे हो सका तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला देते हुए थकता नहीं है, अल्लाह की अता देखें कैसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा किसी अच्छे तरीके से इबादत करता रहा हो, फिर वो बीमार हो जाए, तो जो फरिश्ता इस पर मामूर है उससे कहा जाता है कि ये तंदुरुस्ती के अय्याम में जो अमल करता था उसका वो अमल लिखते रहो ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए। तो अजर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला उसके अमाल की हिफाजत करने वाले फरिश्तों से फरमा देता है कि तुम लिखते जाओ इसके अजर। लेकिन जो आखरत का अजर है वो सही वो अजर है जो बेहिसाब है। अल्लाह ताला हमें भी बेहिसाब अजर अता फरमाए, अल्लाह कोई ऐसी नेकी हमसे ले ले जिसका अजर कयामत तक मिलता रहे। और याद रखें, जितना आपका इखलास ज्यादा होगा ना, उतना ही नेकियों का अजर गैर ममनून होगा। ऐसा ना हो कहीं कि बड़ी बड़ी नेकियां, नाम की बड़ी बड़ी नेकियां हम करते जाएं और खुद ही अपने हाथों से बर्बाद करते जाएं। अब यहां से अल्लाह ताला की जो कुदरत के दलाइल हैं और उसकी कुछ मखलूक का जिक्र है, कैसे अल्लाह ताला ने, जैसे हम पढ़ते भी हैं कुरान में, वलकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, के अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, तो उसकी कुछ तफसील यहाँ पे है। फरमाया, कुल कह दीजिए, ए नबी आप कह दें, अइन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्ध फी यौमैन, क्या तुम उस रब का इनकार करते हो, उस खुदा से कुफर करते हो, उसकी अजमत नहीं पहचानते जिसने इस जमीन को पैदा किया 2 दिनों में। यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस जमीन को जिस पर तुम रहते हो, उसको 2 दिन लगा के पैदा किया। ये जमीन जिस पे पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, लावा भी है, पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, खजाने हैं, कितना कुछ है इस पे, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने इसको बनाया?